Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Esha Deva. Pradisho nu sarvaha, purvoha jataha, sau garbhiyantaha, sa eva jataha, sa janishyamanaha, Pratyagzana Stishtati Sarvato Mukha. अभी जो है परमात्मा का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं. पहले आपको बताया था ना, जिसको जानने से सभी पासों से बंधन से छूट जाता है. सर्वपाशे प्रमुच्यते कदा देवम गत्वा वायना जदात्मतत्व न तु ब्रह्म तत्व दीपोपमेन इह युक्त प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्वतत्वैर्विशुद्धम गत्वा देवमुच्यते सर्वपाश सर्वपाशोय मुच्यते. इसी का नीचे के थोड़ा रह गया था, वो मिला इस श्लोक में. सर्व पाशे मिच्छते बतलाते हैं कि किदृशम, ये प्रश्न किया था कैसे ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाता है, तो इसके उत्तर में दिया अन्यस्मात् अजायमानम, दूसरा से वो जो पैदा नहीं हुआ है, दूसरा से जो पैदा नहीं होता है उसका नाम अज. अजम ध्रुवम अन्य बतलाए ना, अजम ध्रुवम सर्व तत्वेर विशुद्धम. अजन्मा है, ध्रुव है, निश्चित है, अविनाशी है, सर्व तत्व ही इसका अर्थ करते हैं. सर्व तत्व माने अविद्या भी, अविद्या काम कर्म दूषित ही, अविद्या काम कर्म से जो दूषित हो जाता है वो दोषों से मुक्त का नाम है सर्व तत्व विशुद्धम. मानी बात शुद्धम विशुद्धम. कस्मात विशुद्धम, पहले अशुद्ध होगा तब न शुद्ध होगा, अशुद्ध हुए बिना शुद्ध कहां से होगा. जब कहे सर्व तत्व विशुद्धम तो माने बहुत से तत्व ऐसा है जो दूषित करता है. आपको पहले बतलाया है, पहले श्लोक में बतलाया था, इससे पहले श्लोक में यानी बात जो दूषित हुआ था, क्या श्लोक था, क्या लय बिंबम यदैव बिंबम हृदया उपलिप्तम यानी बात मृदया उपलिप्तम. तो मिट्टी के द्वारा जो उपलिप्त हो गया कौन, बिंब. बिंब का मतलब क्या बतलाया था, क्या लाए बिंब तो किसी का भी हो सकता है. यहां सुवर्ण लिया था, सुवर्ण भी बिंब है, दर्पण भी बिंब है, आपका मुख भी बिंब है. जब बिंब दर्पण के सामने आया तो मुख जो है काला देखा, गंदा देखा, कालियां देखा, मिट्टी देखा, तो क्या करोगे, बिंब को साफ करने के लिए प्रतिबिंब के जाओगे. तो बिंब को साफ करना है, प्रतिबिंब को साफ करना है, तो बिंब को साफ करना पड़ता है. प्रतिबिंब को साफ करने के लिए प्रतिबिंब को साफ करना, बिंब को साफ करना पड़ेगा. दर्पण के मुख जो गंदा है तो दर्पण के मुख से गंधक गंदा पानी को साफ करने के लिए दर्पण का मुख को साफ करोगे? दर्पण को साफ करने से भी साफ नहीं होगा। दर्पण को साफ करोगे तो दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब तो गंदा ही दिखेगा। हाँ, बिंब को साफ करना पड़ेगा। जैसे बिंब शुद्ध होता हुआ भी बाहर के मिट्टी से अथवा किसी से सुवर्ण रूपी बिंब मुख रूपी बिंब अनिवार्य गंदा दिखता था, उसको आपने साफ कर दिया। जब साफ कर दिया तो दर्पणस्थ प्रतिबिंब भी साफ हो गया, शुद्ध हो गया, अनिवार्य। ऐसे आत्मतत्व नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। आत्मतत्व कैसा है? शुद्ध स्वरूप है। अविद्या अविद्या के काम अविद्या काम कर्मादि के द्वारा अदूषित है। होता हुआ भी हमने उसमें दोष लगाया, आरोप लगाया, तो आरोप को हटाना पड़ेगा ना। दोष माने आरोप, जैसे कृष्ण के ऊपर दोष आरोपण हुआ, राम में दोष आरोपण हुआ, सीता में दोष आरोपण हुआ, दोष लगाया जाता है। उसमें होता नहीं है दोष, आपस आरोप लगाया, आरोप किया जाता है। जैसे समझे ना, स्फटिक मणि है, स्फटिक मणि जो है ना सफेद होता है। होता हुआ भी स्फटिक मणि लाल क्यों दिखाई दिया? लाल का आरोप हुआ। रक्त स्फटिक वायम, ये रक्त स्फटिक है, लाल फूल है, तो लाल फूल है लिया, लाल मणि है तो लाल मणि, मणि लाल हुआ कैसे? मणि तो सफेद होता है, तो लाल फूल का जो रक्तिमा है लालिमा है, वो लालिमा मणि में आरोपित हो गया, आरोपित हो गया। तो ऐसे समझ लेना आत्मा कैसा है, कहते हैं शुद्ध स्वरूप है, नित्य शुद्ध है। शुद्ध स्वरूप वाला नित्य शुद्ध है, कभी शुद्ध है कभी अशुद्ध है, ऐसा नहीं। आत्मा नित्य शुद्ध है, पर नित्य शुद्ध होता हुआ भी उसको हमने दूषित कर दिया। क्या दूषित कर दिया? अविद्या काम कर्म के द्वारा अहम अज्ञा, मैं अज्ञानी हूं। और क्या हो तुम? करता हूं, भोगता हूं, सुखी हूं, दुखी हूं, संसारी हूं, पापात्मा पापसंभव पापकर्मा हम। तो अहम जो आत्मा है, अहम को हमने पापकर्मा हम पापात्मा हम पापसंभव हम करता हम भोगता हम सुखी हम दुखी हम जातो हम मृत्यु हम अनिवार्य, ये सारे धर्म जो है ना उसमें आरोपित कर दिया। अनिवार्य सेठी जी, क्या है? ठीक है कि नहीं? आरोप किया गया? वही आरोप का अध्यारोप की बात। क्यों? व्यवहार हमेशा आरोपित में होता है, याद रखना। व्यवहार जो होगा ना आरोपित, सत्यम दिति मिथुन कृत अनादि रहे हम लोग व्यवहार पढ़ा के नहीं कभी? अच्छा याद आए, सत्यम दिति मिथुन कृत अनादि रहे हम लोग व्यवहार अनादि काल से जड़ चेतन के संबंध, जड़ और चेतन को मिला करके व्यवहार चल रहा है, झूठा सच्चा मिला करके व्यवहार चल रहा है अनादि काल से। कहते सत्यम रीति मिथुन कृत अनादि रहे हम लोग व्यवहार, यह लोग व्यवहार आज का नहीं है। तो व्यवहार हमेशा एक दूसरे में आरोप करके ही, केवल शुद्ध चैतन्य से भी व्यवहार नहीं होगा, केवल जड़ माया से भी व्यवहार नहीं होगा। हानी बात, दोनों जब मिलेगा ना तो उसमें व्यवहार चलता है। हानी बात, शुद्ध चैतन्य निरीह है, असंग है, निष्काम है, अकाम है। हा? शुद्ध चैतन्य क्या है? अकाम है, आप तो काम है, पूर्ण काम है, निष्काम है, तो क्या व्यवहार करेगा? और जड़ जो है ये कैसा जड़ है, अचेतन है, वो व्यवहार कैसे करेगा? इसलिए शुद्ध और अशुद्ध, जड़ और चेतन, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्नी करता। तुलसीदास जी लिखते ना, इसी के बाद लिखा है, जड़ चेतन गुण दो समय विश्व किन्न करतार अनिवार्य, हंस गुण गहे परिहरी बारी विकार। हंस जो है ना, वो दोनों में से मिला हुआ में से गुण को ग्रहण कर लेता है, दोष को छोड़ देता है। गुण को क्यों हंस करेगा, याद रखना ना? हंस करेगा तो हंस क्यों करेगा, और दूसरा हंस क्यों नहीं है? हंति गच्छति गगने इति हंस, निर्मल आकाश में जो गमन करे उसका नाम है हंस। आनी बात ऐसे निर्मल स्वच्छ आत्मा का जो जानने की इच्छा करेगा ना, उसका नाम हंस। चार प्रकार के संत होता है कि नहीं? हंस परमहंस कोटिचक बहुदक आनी बात, हंस है, परमहंस है, कुटिशक है, बहुतक है, चार प्रकार के बाबा होते हैं, उसमें एक हंस होता है। आनी बात, कुटिचक बहुदक, बहुउदक बहुत तीर्थ स्थानों में जो घूमते हैं ना, बहुउदक परिव्राजक, कुटिया बना करके एक जगह में रह गए। हंति गच्छति विवेक ना, जो परिव्राजक बनकर चलता है। तो ऐसे जो हंस होगा ना, वो हंस गुण को ग्रहण करेगा, दोष को छोड़ेगा। ऐसे आत्मा अनात्मा मिला करके तुम व्यवहार कर रहे हो शरीर में, समझे कि नहीं? शरीर में जो व्यवहार कर रहे हो ना, ये जड़ चेतन मिला करके, केवल जड़ शरीर नहीं चल सकता है, केवल चेतन चल नहीं सकता है। चेतन असंग है, चेतन असंग है। अभी बिजली के तार में है, दो तार है, एक तार से बिजली नहीं प्रकट होते हैं, तो बिजली प्रकट करना का होगा तो दो तार चाहिए। अन्य बात, बल्ब है, बल्ब जलता है, प्रकाश देता है, अन्य बात प्रकाश देता है, और तार से बिजली आएगी नहीं, तार से, तो तार से क्यों नहीं प्रकाश देता है? तार में तो है। आनी बात, तो जैसे वो तार एक जो है ना, तार में बिजली होने पर भी, करंट होने पर भी, पावर होने पर भी वो प्रकाशित नहीं कर सकता, उसके लिए बल्ब का संयोग होना चाहिए। ऐसे अंतकरण जो है ना, अंतकरण भी बल्ब, तब चलेगा, कब? वहां चेतन का आभास पड़ेगा तब, चीजाभास कहते उसको। आनी बात, तो जड़ चेतन दोनों मिलेगा ना, तब जाकर के व्यवहार होता है। जैसे बैटरी है ना, बैटरी उसमें जो है ना, सेल भी है, बल्ब भी है, दोनों जलेगा ना, संबंध होगा, संयोग होगा, तब जाकर प्रकाश देगा। केवल सेल भी प्रकाश नहीं देता, केवल बल्ब भी प्रकाश नहीं देता है, दोनों मिलाओगे। आनी बात, ऐसे ही समझ लेना कि आत्मा और अनात्मा, जड़ चेतन का हो, आत्मा अनात्मा का हो, समझे कि नहीं? उसी को कहो विनाशी अविनाशी कहो, है? तो ये दोनों मिलकर के ही क्या करते हैं, ये संसार का व्यवहार चलाता है। तो इसी बात को लेकर के ब्रह्म सूत्र में पहले बतलाया, अनादिरयम लोक व्यवहार, कैसे सच्चा नृत्य मिथुन कृत्य, जड़ सच्चा झूठा मिला करके, विनाशी अविनाशी मिला करके अनादिकाल से लोक व्यवहार चल रहा है। ये व्यवहार जो होता है ना, एक से नहीं होगा, हाँ, केवल बल्ब से ही नहीं होगा, केवल सेल से भी नहीं होगा। और सेल और बल्ब दोनों को रखने के लिए जगह चाहिए कि नहीं? ये स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर बैठा हुआ है, सूक्ष्म शरीर से एक और कारण शरीर बैठा हुआ है, हाँ, कारण शरीर। उस कारण शरीर को कहते अज्ञान, उसको कहते अविद्या, उसको कहते सुषुप्त अवस्था, है नहीं बात? जब तक अज्ञान है तब तक सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर है, जब तक सूक्ष्म शरीर है तब स्थूल शरीर बनता बिगड़ता जाएगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, ये दोनों चलता रहेगा। ये स्थूल शरीर है ना, स्थूल शरीर कब तक रहेगा? स्थूल शरीर को जला दिया तो आदमी मुक्त हो जाता है कि नहीं? जीवात्मा क्यों? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसा है, स्थूल शरीर नाश होने से जीव की मुक्ति नहीं मिलती है, आनी बात क्यों? हाँ, बदली होते हैं, आनी बात क्यों? जैसे आप रेडियो का मशीन एक रेडियो से निकाल करके दूसरा खोखा में डालते हो, टीवी का मशीन यहाँ से निकाल कर दूसरा में डालते हो कि नहीं? ऐसे यहाँ से सूक्ष्म शरीर रूपी मशीन चला जाता है। ये स्थूल शरीर जब नाश हो जाएगा ना, उत्क्रामांत सीतम भावी भुंजानम भा गुणान्वित विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान सूत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम एव अधिष्ठाय मनस्थाय विषयानुपसेवती उत्क्रामांत सीतम भावी भुंजानम भा गुणान्वित। ये श्लोक याद रखना, हमको जानना है तो कैसे? ये स्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम सा, ये इंद्रिया है ना, स्रोत माने कान, त्वग इंद्रिय, इस पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सत्र तत्व वाला सूक्ष्म शरीर रूपी मशीन इस शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर में जाकर फिट होगा। चाहे हाथी का हो तो हाथी के शरीर में जाएगा, घोड़ा का शरीर में जाएगा, जहां भी कर्म फल भोगने का होता है ना, हाँ, तो वहां जाकर वो फिट हो जाएगा। यह शरीर, स्थूल शरीर बदलेगा, सूक्ष्म शरीर नहीं बदलेगा, याद रखना। सूक्ष्म शरीर जहां जाएगा ना, तो याद होता मुक्त नहीं हो जाती। ये सूक्ष्म शरीर देखते नहीं, देखो आप कहते हैं ना, हमारे पोता जो देखो कैसा आया है, जैसे पहले के जैसे दिखता है, दादाजी वापस आया। हमारे वो चेंबूर में एक किशन दास जी थे, उसका बेटा एक्सीडेंट से मर गया ना, पोता एक्सीडेंट से मर गया, अभी इतना दुखी हो गया कि पोता था। अच्छा, दूसरा उसका बच्चा जब आया, स्वामी जी देखो वही है, आया है, वही बच्चा आया, वापस आया है, देखो एक बिल्कुल एग्जैक्ट चेहरा वही है, वही व्यवहार करता है, वही खेलता कूदता है नहीं बात? आता क्यों ना आएगा ना, जिसको जो है ना आसक्ति रहती है ना, यम यम आप स्मरण भावम तेजत्यंते कले वरम तम तमेव कुंते सदा तद्भाव भावित, याद रखना। तो तब तक प्रेत जोनी है ना, प्रेत जोनी है ना, प्रेत जोनी किसके लिए है? प्रेत जोनी, वो रहता ना प्रेत जोनी में चला गया। अभी अभी जनरल से गोकर्ण ने अपने भाई बहना धुंधुकारी के लिए लिखा है, अरे 11 के दिन के नहीं है, क्या बोला 11 दिन थोड़ी है, अरे भागवत वाला 7 दिन के कहा, वो मर करके कितना दिन था, वो गोकर्ण कहाँ कहाँ घूम घूम करके आया, फिर बाद में 7 दिन था वहाँ, हाँ वहाँ रहता है। देखो जब तक आसक्ति है ना, एक घर में आसक्ति है, बेटा बेटी में आसक्ति है, पत्नी में आसक्ति है, पति में आसक्ति है, जब तक उसकी आसक्ति नहीं जाएगी ना तब तक घूमता ही रहेगा, याद रखना। हाँ, उसका भी भोग समाप्त होगा फिर जाएगा ना वो, ना वो तो है ना। देखो हमारे देश की बात दूसरी है, हमारा देश जो है ना, ये देश किसका है?